सेवा करें। जैसे ईश्वरपुरी पाद जी ने अपने गुरु जी की सेवा की, ठीक इस रूप में जैसे हमारे गोविंद जी ने महाप्रभु जी की सेवा की, उस रूप में हम चलेंगे। जगदानंद जी भी संभव पूर्वक जो कभी करते थे, उस स्थिति में पहले हम पहुंचे तब करें, और इसी स्थिति में हम यदि करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को सब ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्व आचार्यों का, वैष्णवों का दे करके करें स्थिति के अनुसार। और वहां तक पहुंचे नहीं, अब भी संभव हो गया ना, तब फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो भी गुरु हम भी गुरु, हम भी वैसे वैसे, बस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु के प्रति अभी साधन में हम लोग हैं, उसी रूप में हम लोग चले, अपने गुरु को सम्मान और आदर दे करके उसी रूप में चले। इसलिए जब यहां पर जब ऐसा ठीक सेटअप हो जाएगा, तो उस जगत में भी कृष्ण के साथ में, राधा जी के साथ में हम लोगों का जैसा ये ऐसा विषम्भ भाव पहले सख में आएगा, और इसके बाद में वात्सल्य, और उसके बाद में कभी मधु आएगा। व्यास जी ने इस सब्जेक्ट का विचार किया है सर, तो ये बतलाया पहले दास वाला दास, सख्य वाला सख्य, मधुर वाला मधुर, और जो जैसे हैं उस रूप में सुनेंगे कथाओं को, और वैसे ही नामों को जो अपने लिए प्रिय है। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने बतलाया श्री कृष्ण गोपाल हरे गोविंद, मुकुंद हे नंद किशोर कृष्ण, हासी जसोदा तनय प्रसीद, श्री बल्लभी जीवन राज। जिसका जिस पर भाव है बस उस पर वो ट्रेस देता हुआ इसको कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक साधारण साधक से भी लेकर के और बहुत उच्च कोटि के रघुनाथ दास गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे पुरी वाले गोपाल गुरु और उनके ध्यानचंद, उन लोगों ने कितने तरह के सुंदर से सुंदर अर्थ रूप में इसका स्वागत किया। एक एक शब्द का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, एक एक का अर्थ किया है। इसमें कितने कृष्ण आए हैं? चार कृष्ण है ना, चार कृष्णों का चार प्रकार का अर्थ, साथ पहले से आरंभ करके अंतिम वाले को अंतिम अंतिम रूप। और हरे का अर्थ हरे है कितने? आठ, आठ हरों को, आठ हरी का, वहां पर हरे का आठ प्रकार का अर्थ लिया। अंतिम चरम बिंदु, अंत में जो हरे है। राम आए हैं चार बार, चारों रामों का एक अर्थ नहीं लिया, भावना के अनुसार में अपने अपने भजन के अनुसार में ऐसा लिया। इस प्रकार से नाम कीर्तन और ठाकुर जी की पूजा और वैष्णवों की गुरु की सेवा, ये चार चीजें बतलाई। यदि भक्ति की चाहता है तो इनको किसी भी कामना वासना को छोड़ करके, कैसे कामना वासना छोड़ेंगे इसके लिए दिखलाया गया। जैसे हमारे सतयुग में कौन ऋषि, उद्दालक अरुणी, अरुणी ने कैसी अपनी इच्छाओं को छोड़ करके गुरु की सेवा की, उद्दालक जी ने कैसे की, उसके पास आपने कृष्ण और बलदेव, उन्होंने सुदाम और बलदेव उसमें सभी आ गए, किस प्रकार से गुरु सेवा के लिए उन्होंने किया। एक साधारण कर्मी एकलव्य ने कैसी गुरु सेवा की, कैसे सेवा की, मैं जांगू ठाक दे तो बस काने के दर्द बस काट करके दे दी, खाना मत, गैया का दूध मत पीना, तुम मोटा होता जा रहा है, कैसे तू मोटा होता है बतलाओ तो, कैसे जीवित रहता है, तो गौओं को चराता हूं और गाय अपने बछड़े को दूध दे देती है, मैं भी पी लेता हूं, कहा ऐसा मत करना बछड़ा भूखा रह जाएगा। फिर उन्होंने कहा जा अब कैसे जीत रहता है, 10-15 दिन के बाद गैया के मुंह का फेर ले लेता हूं, वो तो गिरी जाएगा तो मैं पोंछ लेता हूं, ऐसा मत करना, किंतु क्या करना ये गुरु जी ने नहीं बतलाया, देखे जी क्या करता है, उनके बाद फिर भी जीत रहा। तो जैसे अरे तू कैसे जीवित रहता है और कुछ बतला कहे ये मत करना, सब तरह से उसको बंद कर दिया है किंतु ये नहीं बतला कि ऐसे रहना। तो वो एक दिन देखा जैसे अब तो जीवित रहना है, गुरु जी की सेवा है, गुरु जी की गैया कौन चरेगा। तो उसने अकबंद पत्ता तोड़ करके उसका दूध पी रहा था, इतने में आंख में लग गई, आंख फूट गई और गिर गया कुएं में। रात भर कुएं में रहा। गुरु जी अरे कहां गया उद्दालक, कहां उद्दालक गया, कहां गया उपमन्यु, कहां गया कहां गया। कहा गुरु जी मैं कुएं में हूं। कुएं में क्यों कर रहा है? उन्हें कुएं से उतारा। कहा गुरु जी मैंने खाया नहीं, एक वन का पत्ता खा लिया। जाओ सारी विद्याएं उपनिषद वेद अवेद का तात्पर्य तुमको आ जाए। तो गुरु जी के हृदय में वेद का जो तात्पर्य था वो उसमें से संक्रमित हो गया। क्या? अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये आ गया। सुखदेव गोस्वामी जी को व्यास जी ने क्या दिया? हम ब्रह्मास्मि कर रहे थे और उन्होंने लकड़ीहारों को और पक्षी पकड़ने वाले बहेलियों को कहा जाओ इसको बुला लो, अच्छे अच्छे सुख पक्षी तुम्हारे जाल में पड़ जाएंगे, ये मंत्र याद कर लो। बस उनको याद करा दिया, बराहा पीड़म नटवर बपु कर्णयु कर्णिकार, अब उसको भेज दिया। उस दिन सचमुच में पक्षी पड़े और वो सुखदेव गोस्वामी भी उनके संपर्क में आ गए। दूसरा जी अपने गुरु जी से पूछना जिसका ऐसा सुंदर रूप है उसके गुण कैसे हैं। तो उन्होंने दूसरे दिन उसको फिर सिखला दिया, अहो वकीयम स्तन काल, सुनाते हैं एकदम अपने आप वो पिंजरा में आ गया और वो व्यास जी के पास में, व्यास जी ने उसको श्रीमद भागवत, ये व्यास जी की कृपा है। समस्त जगत व्यास जी का ऋणी है। कृष्ण के प्रति अहित की भक्ति, और वो भी कैसी, अंतिम चरम बिंदु तक कैसी भक्ति हो सकती है, आज तक किसी ने नहीं दिखाया, इसे समस्त विश्व उनका ऋणी है। इसलिए गुरुदेव अपने जन्म के दिन में उन व्यास जी की पूजा करते हैं और उनकी परंपरा की पूजा करते हैं, और ये सबके लिए जरूरी है करना। और नहीं अपने अपने गुरु तक रह जाएगा तो गुरु को भी छोड़ देगा। गुरु की ऐसी करुणा है जो हम आज समझते नहीं है। वी डोंट रियलाइज द मर्सी ऑफ गुरुदेव। इफ वी न्यू देन देर विल बी नो क्वारल विद गुरुदेव फॉर ओनली फॉर थिंग्स। जागतिक सुख सुविधाओं के लिए गुरु जी से विरोध नहीं हो सकता है। एक इतनी महान चीज को देते हैं गुरुदेव। जगत के लोग बहुत कम रेयर लोग इन चीजों को समझते हैं, जब गुरु के कितने ऋणी हैं, गुरु क्या देता है नहीं समझते हैं। इन ऋषियों ने क्या किया, सर्वस्व त्याग करके उनकी चरण की सेवा को में लगे रहे। सुखदेव गोस्वामी आनंद में मस्त रहते थे उसमें, ब्रह्मानंद में, और उसको छोड़ दिया धिक्कार करके और कहा है व्यास की सेवा में जुट गए। इसलिए इसको चीज को नहीं समझेगा, वो क्या गुरु की सेवा करेगा, प्राण भी गुरु के लिए दे दे तो वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए जन्म जन्मांतर उनका ऋणी रहेगा, यहां तक कि सिद्ध होने पर भी उनका ऋणी रहेगा। इनका ऋण कभी भी दूर हो जाएगा, दूर नहीं होगा, माता पिता भाई बंधु का हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक गुरु अपने जन्म के दिन में अपने गुरु और परंपरा का सब लोग पूजा करते हैं, हम लोग भी ऐसा करेंगे। इसलिए नहीं कि तुम लोग भी हम लोगों के बाद में फिर आचार्य हो जाओगे तो अपनी पूजा शिष्यों से करा लेना, ऐसा नहीं। जगत इन सब चीजों को सीखे। चैतन्य चरितामृत में ओ गुरु तत्व के संबंध में पहले ही परिच्छेद में आदि के पहले ही गुरु पंच गुरु 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 न भक्तानी ईशा ईश भक्तानी ईशा अवतारकान तत्प्रकाशांश्च, ये पांच तत्वों का वहां निरूपण करके गुरु तत्व के संबंध में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है गुरु तत्व में, विशेष करके आजकल कंफ्यूजन का विषय हो गया है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। और इस जन्म में हमको जो गुरु मिलेगा वो दूसरे जन्म में मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा भारी कंफ्यूजन का विषय हो गया। कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है, कोई गुरु तो कृष्ण स्वरूप है ना, क्या कृष्ण
गुरु कृष्ण रूप
हाँ, गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्र प्रमाण, शिक्षा गुरु के ज्ञानी कृष्ण स्वरूप और दीक्षा गुरु कृष्ण का रूप है। तो यदि कृष्ण गुरु कृष्ण का रूप है और उनका स्वरूप है तो गुरु चेंज कहां हुआ, चेंज हुआ किसी भी जन्म में? गुरु तो वही रहेगा। अभी हमारी बुद्धि स्थूल होने से हम इस चीज को नहीं समझते। ऑलवेज वी क्वेश्चन लाइक दिस दैट इन दिस माई बर्थ माई गुरु विल बी अगेन, इट विल गुरु विल मीट इन अनदर बर्थ आर नॉट। कृष्ण इज नॉट चेंजेबल एंड गुरु इज लाइक कृष्ण, then how it came that it is changed? So certainly it is not changed. गुरु तो कहते हैं जब हम प्रत्येक जन्म में आएंगे और तुमको जब तक नहीं हम उद्धार कराएंगे तब तक हम आते रहेंगे। तो एक ही गुरु के एक ही रूप भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। किस रूप में है तब ये समझ लो, जो गुरु जब कृष्ण रूप है तो इसलिए कोई भी चिंता की बात नहीं है। जैसा भी हमको साधन करना है अपने गुरु के ऊपर में निष्ठा रखना है, ये चीज ठीक रहो, साधन भजन अच्छी तरह से करो और देखो जैसे सब ठीक रहेगा। कृष्ण स्वयं ही गुरु होकर के आते हैं ऐसा भी प्रमाण है, या अपने वैसे शक्तिशाली लोगों को राधा जी भेज देती हैं अपनी परिकर को किसी को, या राधा जी व्यवस्था कर देती हैं। इसलिए हम लोग गुरु के पथ में रह करके अच्छी तरह, जैसे हमारे रूप रघुनाथ जी सबको सम्मान देते हुए भजन किया, इस रूप में भजन करना चाहिए। रूप और गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में कभी झगड़ा हुआ शिष्य के लिए, ये हमारा शिष्य हो और उनका शिष्य हो, हम तो समझते छह गोस्वामी किसी ने शिष्य ही नहीं किया, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट, एक गोपाल भट्ट को देखते हैं कि थोड़ा सा शिष्य थे, वो भी गोस्वामियों के कहने पर। हमारे लोकनाथ गोस्वामी कभी शिष्य ही नहीं करते थे, बड़ी मुश्किल से जीव गोस्वामी के कहने पर एक को उन्होंने शिष्य, किंतु कोई भी उनका शिष्य हो सकता है, कोई भी उससे यदि मथाचार्य व्यास जी का शिष्य हो सकते हैं ने? हम उनके जीवन से अनुप्राणित यदि हो, उनके विचारों को ले आचारों को भी ले ने? तो हम उनके शिष्य हैं। शिक्षा गुरु तो इसी को कहते हैं, उनके विचारों को लेंगे उनके शिक्षाओं को लेंगे और ठीक वैसे ही चलेंगे। जैसे रूप के समीप कोई बैठा हो, और वृंदावन में यहीं पर बैठते थे और सब समय उनके पास में बैठ रहा, सब समय उनकी चर्चा में हो, उनके उपदेशों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके शिक्षा गुरु उनके नहीं होंगे? वो जरूर होंगे। इसलिए हमारे वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथानितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण। इसमें अपने गुरु को दीक्षा लेकर के बाकी को शिक्षा गुरु में ले लिया, तो ये सब अपने दीक्षा गुरु से कम हो गए? नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो दीक्षा गुरु से कम है। इसलिए ये सब भ्रम में न पढ़ करके भेद बुद्धि में नहीं आकर के गुरुदेव को गुरु तत्व को अखंड गुरु में लेकर के रख करके हम उस प्रकार से भजन करेंगे। वहां पर कोई द्वेष हिंसा इत्यादि का कोई भाव ही नहीं। हमारे चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में व्यास पूजा की भी बात उल्लेख है। चैतन्य भागवत है, चैतन्य भागवत। वहां पर हमारे नित्यानंद प्रभु जी ने वो व्यास पूजा की थी, महाप्रभु जी के गले में पुष्प की माला देकर के। उसमें बहुत से सुंदर सुंदर सब विचार हैं भीतर में, उन सब विचारों को लेकर के हमको चलना चाहिए। कल हम लोग अपने गुरु जी के संबंध में नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सुत सस्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के संबंध में हम बतलाएंगे। तब ये समझ लीजिए गुरु जी का जीवन चरित्र और उनके गुरु चरित्र एक है, मिला हुआ। जैसे कृष्ण की बात हम कहेंगे तो राधा जी को छोड़ करके, अच्छा हम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो कौन प्रणाम सबसे अच्छा होगा जानते हैं? जिसमें राधा जी से संबंधित हो वो प्रणाम सबसे अच्छा होगा। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अंत में राधा जी को ले गया, राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं। राधा जी को प्रणाम करें तो क्या करेंगे, कैसे प्रणाम करेंगे? राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पाद जाब्द दास्यम मह्यम प्रदीयताम। अच्छा उसमें भी ऐसा होगा जो कृष्ण से संबंध उसमें आ जाएगा, इसलिए एक को छोड़कर के अलग नहीं है। इसलिए हम अपने गुरु जी का जो महिमा वर्णन करेंगे उसमें प्रभुपाद जी का महिमा अपने आप आ जाएगा, वैष्णव की महिमा सब आ जाएगा अपने आप। कृष्ण का लीला चरित्र वर्णन करते करते श्रीमद् भागवत में यह कृष्ण का लीला चरित्र रह गया बीच में और हो गया किसका, गोपियों का, और राधा जी का ही चरित्र अधिक वर्णन हो गया। और उसमें अंधे लोग देखते हैं कि राधा जी का नाम ही नहीं है। राधा जी क्या कृष्ण का अंत में प्रणाम प्रणाम न करके वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेण अभिज्ञ जासांग हरि कथोत्कीत पुनाति भुवनत्रयम् आशामहो चरण रेणी जुषाम हम श्याम वृंदावने किमकुलौषधी नाम जुस्वजन स्वजन आर्ज पसंत हित्वा भेजे मुकुंद पदवीं सुतभि मृमिज्ञान। जहां भी देखते हैं गोपियों का उत्कर्ष दिखलाया। इसलिए कृष्ण भक्तों को छोड़कर के, स्वरूप शक्ति राधा जी को छोड़कर के, गोपियों को छोड़कर के, सखाओं को छोड़कर के अकेले नहीं। वैसे गुरु भी उनके गुरु जी का, गुरु जी की महिमा किस लिए, गुरु की महिमा किस लिए होती है? जो अपने गुरु जी के सेवक हैं वही उनकी महिमा है। जो गुरु अपने सेवक की, अपने गुरु की सेवा नहीं करता वो कभी भी गुरु न होने योग्य ही नहीं है, वो गुरु नहीं है जो खुद अपने को गुरु मानता है। इसलिए गुरु कौन है, जो अपने गुरु को संपूर्ण रूप से उनके प्रति आत्मसमर्पण करके, उनकी सेवा करके, उनकी प्रति वांछा मनोकामना को पूर्ण करता, मनोभूष्ट सेवा करता है, वही गुरु सेवक है। हमारे गुरु जी में प्रधान ये गुण है कि अपने गुरु जी के लिए उन्होंने सर्वस्व किया, अपना प्राण भी उनके लिए समर्पित। गुरु सेवा के लिए छोड़ करके और उन्होंने जीवन में कोई विचार नहीं किया, ऐसी उनकी निष्ठा थी। यदि उनके गुरु पर ऊपर में कोई कटाक्ष कर दिया थोड़ा भी तो क्या करते थे, चुप नहीं बैठ सकते थे। कुछ लोग धैर्य धारण करते हैं, धैर्य तो ठीक है, बिगड़ना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु जगत में यदि उसकी मैया को कोई गाली दे रहा है तो वो चुप बैठेगा तो वो हिजड़ा है। ऐसे ही भक्ति, भगवान और भक्त, तीनों के विरुद्ध कोई बात कर रहा है और किसी को क्रोध नहीं हुआ तो वो परमार्थ राज्य का हिजड़ा है, वो परमार्थ से उसका कोई संबंध नहीं। भक्ति के विरुद्ध कोई कर रहा है कोई बात कोई भगवान का विरोध ही कर रहा है, कोई गुरु वैष्णव का विरोध में बात कर रहा है, उस समय चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, चुपचाप सहन नहीं लेना चाहिए। उस समय उसका खून खौल नहीं उठता, तबे लाठी मारो लंका को एकदम जला करके भस्म कर देंगे। ये तृणादपि से नीचता है। इसलिए
गुरु जी के निंदा कराने चुपचाप सुन लिया,
वैष्णव की निंदा कराए सुन लिया, भक्ति की निंदा कराए सुन लिया, ये वैष्णवता नहीं, ये निरपेक्षता निरपेक्षता नहीं। इसलिए गुरु जी ने बहुत से अवसरों पर ऐसा देखा गया, जबकि बागवत वहां कलकत्ते या नवद्वीप में परिक्रमा के समय उनकी परिक्रमा को बाधा देने के लिए वहां के गोसाई लोगों ने, वहां के स्मार्ट ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। क्यों विरोध किया? अब लोग हमारी पूजा नहीं करेंगे, इसी की पूजा करेंगे। और नवद्वीप यहां से उठ गया, मायापुर महाप्रभु का जन्म दिवस जन्म मनाया जा रहा है, जन्म स्थान, और लोक परंपरा से हम लोग गोस्वामी हैं। ये तो कहता है जो गुण से गोस्वामी होते हैं, ये यदि मानने लगे तो हम लोगों की कोई पूजा नहीं करेगा। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, ना निरक्षर हैं, जैसे हैं कुछ नहीं जानते, तभी लोग हमारी पूजा करते। और ये क्या कहता है? चतुर्विधा चतुर वर्ण म्यास सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुण और नहीं है तो गोस्वामी मत कहो इनको, बस इस पर बिगड़ गए। उन्होंने क्या किया? अच्छे अच्छे नवजुवक लड़कों को लेकर के, शिक्षित समाज के अंतरिम के लड़कों और लड़कियों को लेकर के दीक्षा देकर के उनको भगवत भक्ति में बढ़ाया। समाज के लोग कुछ क्षिप्त हो गए, अरे ये सब अच्छे अच्छे लड़कों को बिगाड़ रहा है, कहां ये विवाह शादी करके संसार में और मरेंगे और अच्छी तरह से ये डूबे, ये न करके उनको भगवान की भक्ति में लगा रहा है। इसलिए वो लोग भी बिगड़ गए। बहुत से प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे बहुत से उस समय में न जानने के कारण हमारे शत्रु हो गए, एक न एक दिन ये समझेंगे और हमारे प्रति उनका भाव बदलेगा। सचमुच में पीछे से ऐसा हुआ, लोगों ने समझा। तो गुरु जी ने उस समय में अपना वस्त्र उनको दे करके और गुरु जी का वस्त्र पहन लिया, गुरु जी नहीं दे रहे थे, और गुरु जी का वस्त्र जबरदस्ती निकाल करके खुद बन करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती बन गए और प्रभुपाद जी को वहां से निकाल करके मायापुर में भेज दिया। किसी को पता ही नहीं लगा। अब फिर इतने में पुलिस टुलिस आ गई, फिर अपने आप ये भी चले आए। एक बार हम लोगों ने देखा, हम लोग मथुरा में थे, हमारी पत्रिका भागवत पत्रिका निकलती थी, अब थोड़ी सी बंद हो गई है। तो उस समय निम्बार संप्रदाय है, उसने लिखा ये महाप्रभु जी केशव काश्मीरी के शिष्य थे, केशव काश्मीरी ने महाप्रभु जी को परास्त कर दिया और परास्त करके महाप्रभु जी को जुगल मंत्र दिया और मधुर रस की उपासना में उनको प्रविष्ट कराया। हमने गुरु महाराज जी को लेकर के वो पढ़ करके सुनाया, गुरु महाराज कांपने लगे क्रोध से, बोले जा भी कलम लाओ। बस कलम ले आया और मैं कागज ले लिया, कहे लिखो। बस बंगला में उन्होंने 10-15 लाइन के वो लिखाया, निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। और हम लोगों के संप्रदाय में निम्बादित्य चतुष्सना शास्त्र में मिलता है, यदि निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति हुआ होता है तो उसके साहित्य होते, किंतु जीव गोस्वामी जैसे धुरंधर विद्वान ने, मध्य संप्रदाय के किसी विद्वान ने या किसी भी संप्रदाय के किसी विद्वान ने निम्बार्क शब्द का उल्लेख नहीं किया है। और सचमुच बात ऐसी है, इसलिए ये धप्पाबाजी है। धप्पा समझते हैं बंगला शब्द। इसलिए यह सब चैतन्य चैतामित इत्यादि के विरुद्ध बातें हैं, निम्बादित्य हैं, वो वैष्णव के अंतर्गत है। इसके बाद में वो कहा करके रजिस्ट्री कर करके भेज दिया उनके पास में, हिंदी उसमें लेकर के पत्रिका में प्रकाशित किया, पत्रिका उनके यहां जाती थी, आदान प्रदान होती थी। वो लोग पढ़ करके बड़े बिगड़े और कोर्ट में नालिश कर दिया गुरु जी के ऊपर में, मानहानि केस 4 लाख रुपए का, उसमें 4 लाख रुपए का मान है। गुरु जी ने उसका उत्तर दिया, अपने बलबूते पर करेंगे ऐसा। मैं इसी के लिए आया हूं, मैं साबित करूंगा। निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, और ये 4 लाख रुपया आप लेंगे कि नहीं लेंगे वो पीछे देखा जाएगा। और लिख करके और पत्रिका में फिर छपवाया, फिर उनके पास में गया। उनके वकीलों ने परामर्श दिया, बड़े बड़े वकील थे, आप उनसे मत लगिए, नहीं तो केंचुआ फोड़ने, माने केंचुआ एक होता है वो उसको पकड़ने जाएंगे, सांप निकल कर तुम्हें काट देगा और तुम्हारा अस्तित्व भी विलीन हो जाएगा, घर में चुपचाप बैठे रहो, बस चुपचाप। उसी प्रकार से प्रभुपाद के विरुद्ध सहजिया सावड़ी का सहजिया दल था, प्रभुपाद को कहता था ये रस कुछ नहीं, ये गुठली चूसते हैं। गुठली आदमी चूस करके अब फेंक देता है ना, या खोसा, खोसा किसको कहते हैं,
छिलका,
ये छिलका चूसने वाले हैं, रस से कोई संबंध नहीं। हम लोग रास पंचाध्याय इत्यादि लीलाओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, रास लीला करते हैं और सबको यही सुनाते हैं। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुछ नहीं जानते थे, ये सब हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं। इस तरह से उन्होंने लिखा और गुरु महाराज जी ने कहा हम 5 प्रबंध लिखेंगे और इसका उत्तर देंगे। सावड़ी साला गाली भी है और सावड़ी साला रंधन साला पाकशाला
धर्मशाला
ये कोई बुरी बात नहीं है। और सावड़ी रूपी साला के भीत में ही रावण सीता हरण, और ऐसे 5 करके दे दिया और कुछ अधिक नहीं लिखा। एकदम नीचे से ऊपर तक सब लोग जल गए और उनके विरुद्ध में वैसा ही केस किया मेदिनीपुर। हम लोगों ने कहा, हम लोगों को डर लगा, मुझे डर लगा गुरु जी से, कहा जी गुरु जी ये तो आपने किया किंतु एक बात कीजिए, उसमें केस गुरु जी के नाम से नरसिंह महाराज, बामन महाराज, त्रिविक्रम महाराज और नारायण महाराज, इन लोगों पर केस हुआ था। हम लोग संपादक थे ना, तो गुरु जी ने कलकत्ते का सबसे बाघा वकील को किया और उसको खड़ा कर दिया। वो एकदम गर्ज गर्ज करके सिंह की भांति कहने लगा, हम इसको प्रमाण करके रहेंगे, जो ये ठीक है। बस वो लोग सब डर गए। जज ने कहा भैया इनसे माफी मांग लो और आप फिर मत लिखेंगे। उन्होंने कहा मैं तो लिखूंगा, हम तो सन्यासी हैं, हम किसी की बात नहीं, हम तो समाज का संस्कार करने के लिए और भजन करने के लिए आए। इस तरह से वहां पर भी अब फिर तब से कलम उन्होंने गौड़ीय वैष्णव के संबंध में कभी नहीं लिखा। निम्बार्क वाले भी उस समय से बंद कर दिया। ऐसे महान तेजी थे गुरु जी। इसलिए हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी जी ने, जो प्रभुपाद के भी प्रिय थे, उन्होंने इनको उपाधि दी पाषंड गजई का सिंह, पाषंड रूप जो गज है हाथी, उसको भी दंड देने वाले ये सिंह के समान है। सचमुच में वैसे थे, बड़े सुंदर वक्ता थे, बहुत ही अद्भुत, और राइटर भी वैसे थे जैसे वक्ता वैसे राइटर, और वैसे ही बड़ी सुंदर अलंकृत भाषा उनकी थी। जो गौड़ीय पत्रिका हम लोगों का उस समय का देखेंगे, उन्होंने लिखवाया है अद्भुत। हम लोग 10 किताब लेकर के तब थोड़ा सा लिखते हैं, उनको किताब किताब की कोई जरूरत नहीं। मायावाद की जीवनी, वो त्रिशूलम, अचिंत भेदा भेद, और कितने प्रबंध, सब अद्भुत अद्भुत। ये सब उनकी गुरु सेवा है, ये सब गुरु सेवा है जो साधारण लोगों के लिए संभव पर नहीं है। आचार विचार के द्वारा, लेखनी के द्वारा, भाषण के द्वारा उन्होंने जीवन भर इसी तरह से किया। वैसे गुरु जी के आज हम लोग व्यास पूजा का अधिवास आज हम मना रहे हैं। वो हम सब लोगों पर, आप लोगों पर कृपा करें, हम लोग वैसे गुरु निष्ठा के साथ में भजन कर सकें और दूसरों की भी सहायता कर सकें। आज यही तक है पंचाकल, कल हम लोग 9 बजे से आरंभ करेंगे। अभी रात में इसको सब ठीक कर देंगे और 9 बजे से बैठ करके कीर्तन इत्यादि करेंगे। यदि जिसको कुछ जाना वाना हो परिक्रमा इत्यादि तो 9 बजे तक 9:30 बजे तक कर करके अपना तैयार होकर के आ जाएंगे। पहले हम लोग गुरु जी की ये सब उनका जीवन चरित्र अपराकृत जीवन के चरित्र के संबंध में बोलेंगे और इसका बाद में विभिन्न वक्ता लोग बोलेंगे और अंत में उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे। पुष्पांजलि मैंने क्या, उनके जीवन चरित्र में हम लोगों ने आचार और विचार में जो सीखा उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, ये सबसे अच्छी पुष्पांजलि। जैसे वो भजन करते थे वैसा ही हम लोग भी भजन करेंगे इस बात पर, यही उनके चरणों में पुष्पांजलि। आप लोग भी भविष्य के निधि हैं, ऐसे ही भजन करें और उनके पद चिन्ह अपने आराध्य राधा कृष्ण की पूजा करेंगे या नारायण की पूजा करेंगे या जिसका जैसा है वैसा पूजा करेंगे। ये गुरु परंपरा की है। तो हम लोगों के नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्वत सस्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का कल इस धराधाम में आविर्भाव दिवस है। हमारे गुरुजी अपने जन्मदिन पर अपने गुरुजी से आरंभ कर अपने सारे गुरु परंपरा के आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शन करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने समय में एक पद्धति का आविष्कार किया, वो शंकर संप्रदाय की है, पुरी में रहते समय उन्होंने इसको संग्रह किया। उसमें उन्होंने गुरु पंचक, कृष्ण पंचक, व्यास पंचक, आचार्य पंचक, पंचतत्व,
तत्व पंचक, पांच प्रकार,
पांच और दो, सात पंचक की पूजा का विधान दिया। जैसे कि व्यास पंचक में व्यास जी और उनके चार शिष्य पैल, वैशंपायन, सुमंत, जैमिनी और व्यास, और कृष्ण पंचक में कृष्णचंद्र जी, राधिका जी, गौर जी, गदाधर जी और एक और को लिया है। ये पांच तत्वों का पंच तत्व में श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवास आदि, श्री गौर भक्त। आचार्य पंचक में अपनी पांच पीढ़ी के गुरु, जैसे गुरु जी कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, ये चार हुए, इन चारों को, और बीच में सुखदेव गोस्वामी या किसको रखते हैं। इस तरह से पंच पंच, इस तरह से सात पंच, सात पांच 35 लोगों की गुरु परंपरा में पूजा करते थे। क्यों ऐसा क्यों करते थे? अपने केवल गुरु को मानने से और गुरु परंपरा को नहीं मानते हैं तो निगम कल्प तरुर गलितंग फलम सुखमुखाद अमृत द्रवसंयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मोहु रोहु रसिका भू भागुका। ये जो कृष्ण प्रेम इस जगत की चीज नहीं है, गोलोक वृंदावन की चीज है। कृष्ण कृष्ण से आए ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से सुखदेव गोस्वामी, व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी, इस तरह से आज तक की धारा में वो चीज आ रही। यदि एक कड़ी को बीच में किसी एक को बंद कर दिया तो वो धारा कैसे आएगी? धारा नहीं आएगी। इसलिए अपने सब गुरुओं को मानना है, ने? एक को मानते हैं, एक दूसरे को नहीं मानते हैं, तो वो अर्ध को कोटि न्याय हो जाएगा। बस अपने गुरुजी ने जो कहा है, उन्होंने जो लिखा है, बस आप मैं मानता हूं। आई डोंट बिलीव एनी आचार्य, आई ओनली डिपेंड ऑन माई गुरुदेव, व्हाट ही हैज रिटन, व्हाट ही हैज डन, आई बिलीव इन हिम, नॉट एनी गुरु परंपरा। देन एवरीथिंग विल बी स्पॉइल्ड। There will be no link from Krishna to here. So he will not have the real thing. इसलिए ऐसा नहीं, हम लोग को गुरु परंपरा जानना चाहिए। संसार में जैसे वंश परंपरा होती है, अपने पिताजी को मानते हैं, अपने पितामह को नहीं मानते हैं, तो तुम्हारे पिताजी कहां आए, कहां से? इसलिए यह ठीक नहीं। इसलिए भजन राज्य में अपने गुरु को, जैसे अब हम लोग देखिए झट एकदम लिंक लगा लेंगे कहां से, श्री भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, श्री गौर कुशोर दास बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, श्री बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ जगवर्ती ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, स्वरूप दामोदर राय रामानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि, श्री गौर भक्त बिंद, ईश्वर कुरिपाद, माधवंद कुरिपाद, लक्ष्मीपति मध्वाचार्य के, ये सब मध्वाचार्य, फिर व्यास, और व्यास से नारद, ब्रह्मा, और एकदम कृष्ण, पहुंच गए ना। इस लिंग को जो नहीं मानता है, वो भजन करते हैं ऐसे, उनका भजन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गुरु अपने जन्म के दिन में अपनी पूजा करवाने के लिए बहुत वो उतावला नहीं होता, अपनी पूजा के लिए वो व्यास पूजा नहीं रख, उसका नाम रखा है व्यास पूजा, माने व्यास की जो लाइन है, धारा है, उसकी पूजा गुरु अपने जन्मदिन में करें। गुरु सुर
और सी
डू पूजा ऑफ देयर गुरु परंपरा, फ्रॉम गुरु टू कृष्ण, दिस इज व्यास पूजा। ऐसा जो नहीं करेगा, गुरु परंपरा जानता ही नहीं है, इफ ही डज नॉट नो द गुरु परंपरा, ही कैन नॉट डू भजन, भजन नहीं कर सकता। साधारण लोग रूप में ऐसा समझते हैं, अरे भाई कहीं रहेंगे, हरे कृष्ण कर लेंगे, कृष्ण का कोई मंत्र, कृष्ण शरणम मम, या कोई मंत्र ले लेंगे, और स्वच्छंद रूप से रहेंगे, हमारे गुरु जी ही बस, उसके बाद में कोई कुछ नहीं। ऐसा ही साधारण रूप में सब लोग भजन करते हैं, इसलिए उनकी भजन सिद्धि नहीं होती। वो तो समझते हैं हमारी भजन सिद्धि हो जाए, किंतु नहीं होती, तो फिर ये गुरु परंपरा की क्या जरूरत। इसलिए ऐसा नहीं, उस लाइन में आना चाहिए। इसलिए कह दिया, संप्रदाय विहीना जे मंत्रा ते विफला मंत्रा, संप्रदाय को छोड़कर के और जितने भी मंत्र है वो सब बेकार। बेकार किस लिए? जो आप नौकरी करके रुपया पैसा आपको मिल जाता है, तो वो भजन करके आपको वही रुपया पैसा वर्ल्डली चीजें मिल जाएंगे। यू कैन अटेंड ओनली वर्ल्डली थिंग्स, यू कैन गेट इट बाय सर्विस, बाय बिजनेस एंड ऑल, बाय ऑल अदर मीन्स दिस यू कैन हैव, बट यू कैन नॉट हैव सुपर नेचुरल, मैंने कृष्ण और कृष्ण प्रेम, वो नहीं मिलेगा। ये तो सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, तो वही चीज वो दे करके भजन से क्या होगा, अनर्थ नहीं दूर होगा, वही अनर्थ ही प्रधान हो जाएगा, भजन नहीं रहेगा उस परंपरा में आने से, भजन नहीं होगा, अनर्थ दूर नहीं होगा, उन्हीं चीजों के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को देखो और सब लोगों को, हमारे रूप सनातन इत्यादि को देखो, क्या किया उन लोगों ने, वर्ल्डली चीजों को ही दम छोड़ दिया, इसे कोई मतलब नहीं रहे, नहीं तो उसी के लिए परस्पर विरोध होगा और भजन दूर हो जाएगा, इसलिए इसके तरफ में ध्यान नहीं दिया। ऐसे लोगों को शुक्राचार्य की परंपरा में भेज दिया, जाओ शुक्राचार्य तुम्हारे शुक्र का वो आचार्य है, शुक्र से जन्म मरण और ये सब चीज होता है, बस इसी में फंसे रहो, इसलिए धर्म में नहीं जाना है हम लोग के लिए सीधा रास्ता है गुरु परंपरा के लिए। शंकर संप्रदाय में भी पूजा होती है व्यास की। व्यास कहते हैं कौन, कौन है व्यास, एक केंद्र बिंदु से लेकर के उसको बढ़ाते बढ़ाते सर्कल के रूप में वो जो होता है वो होता है व्यास। एक केंद्र बिंदु से कोई एक समान दूरी लेकर वहां से वृत्त जो खींचा जाता है वो वृत्त का अंतिम बिंदु सब जो है उसको कहते हैं व्यास। अर्थात तो बिंदु से उसको बढ़ा करके कहां तक लेकर के वो ले गए, किस चीज को, समस्त जगत के कारण सर्व कारण कारण कृष्ण है, उस कृष्ण को जगत में विस्तार किया, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि उनको कहते हैं व्यास, जो भगवान की लीला कथाओं को जगत में प्रसारित करके जीवों के अज्ञान को दूर कर भगवान के प्रेम तक उसको पहुंचा दें, यह है व्यास का काम। जो इसको कर सकेगा वो व्यास की गद्दी पर वही आचार्य होता है, इसलिए उनकी गद्दी पर बैठ करके जो आचार्य होते हैं उनकी पूजा भी व्यास पूजा इस रूप में कही गई है। इसलिए व्यास जी ने क्या किया देखो, उनके पहले 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों में 5 प्रकार के दर्शन शास्त्र वाले ऋषि लोग आए, चार्वाक आए, चार्वाक को भी ऋषि कहते हैं। इसके बाद में शंख वाले कपिल जी आए, वैशेषिक कणाथ ऋषि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और पातंजलि योग के ये सब ऋषि लोग आए। हमारे चार्वाक जी ने कहा चारुवाक, चारु माने सुंदर, अपात मधुर, जो अपात मधुर क्या चीज, एट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। किशोर किशोरियों का संग, धन संपत्ति, खाने के लिए घी और घी से बना हुआ चीज, मिठाई चाई इत्यादि रहते, खूब खाओ पियो मौज करो और आराम करो, यही जीवन है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए अधिकांश लोगों ने इसको ग्रहण किया, किंतु उसके बाद वाले जो आए बोले अरे इसमें मरेगा, इसमें कोई चारु में जो दिखता है मधुर वो कोई भी चीज ठीक नहीं है, अपात मधुर है, इट सीम्स टू बी सो स्वीट बट इन द एंड इट इज नॉट स्वीट, All worldly desires up to स्वर्ग and everything, कोई भी चीज अच्छी नहीं है उन लोगों ने। इसलिए उन्होंने कहा जो करो, पातंजलि जी आए बोले यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि इत्यादि बताया, इसके द्वारा अत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाएगी, बस इसी के करीब करीब में पंच दर्शनों ने ऐसा ही कहा। व्यास जी आए और उन्होंने कहा जैसे ये सब चीजें ठीक नहीं है, जहां तक करें वहां तक कुछ कुछ ठीक होने पर भी ये अंतिम चीजें नहीं है, जीव चेतन है, भगवान का वो अंश है, इन पद्धतियों के द्वारा आतंतिक रूप में दुख की निवृत्ति नहीं होती. व्यास देव केम एंड टोल्ड दैट ऑल द ऋषिज एंड महर्षिज व्हाट दे हैव टोल्ड, जो शंख
पतंजलि
न्याय एंड ऑल अदर थिंग्स एंड चार्वाक हैज टोल्ड एवरीथिंग, दे आर समव्हाट ट्रू somewhat, to some extent, but not
full extent.
In full extent. All are miserable, दुख देने वाले. उन्होंने जीव को भगवान का अंश बतलाया और भगवान को भूल करके जीव इस जगत में आया है और उसको तब सुख होगा जब वो भगवान के सन्मुख होकर के गुरु की सेवा के द्वारा भगवान के उन्मुख होगा. भयं द्वितीयाद अविनिवेशतस्यात् ईशात् अपि तस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायातो बुध आभजन तन् भक्तैक जेषां गुरु देवतात्मा. गुरु के चरणों में सबसे पहले आत्मसमर्पण करना पड़ेगा. जीव आया कैसे, भगवान को भूल करके आया. भगवान को भूलने से ही उसके जितने भी बुद्धि थी वो सब ढक गई और भगवान से उसको दूर फेंक दिया. एक विक्षेपात्मिका माया और एक अवरणात्मिका, दूर फेंक करके उसकी आत्मा को ढक दिया. तब वो भगवान से दूर होकर के अपने को द्वितीय अभिनिवेश में आया. द्वितीय अभिनिवेश माने क्या है, भगवान की सेवा को छोड़ करके अपने सुख में वो लग गया. इसको कहते हैं द्वितीय अभिनिवेश. इसलिए द्वितीय अभिनिवेश जीव को है. इफ एनीवन हैज दिस सेकंड थिंग that I will be happy living Krishna, forgetting Krishna, then anyhow if he has good sanskar, वो संस्कार उसके अच्छे हैं तो सदगुरु के चरणों में जाता है. then he takes the shelter of सदगुरु. तो जो व्यक्ति अपने समस्त जागतिक डिजायर को, इच्छाओं को दूर करके गुरु के शरणागत होता है तो गुरु उसको हेल्प करके, उसकी सहायता करके, तत्व ज्ञान उसमें दे करके और भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित कर देता है. वैसा जीव कहां तक जाएगा. आतंतिक दुख निवृत्ति तो अपने आप रास्ते में हो जाएगी अपने आप. और इसके बाद में बैकुंठ से ऊपर अयोध्या धाम, उससे भी ऊपर द्वारका, गोलोक में भीतर में प्रवेश किया. गोलोक में भी शांत रस, दास्य रस, इसके ऊपर में वृंदावन में पहुंच करके सख वात्सल्य और अंत में सबके ऊपर में मधुर रस को वो प्राप्त कर सकता है उस गुरु जी की कृपा से. व्यास जी ने इन चीजों को दिया और इस चीज में लोगों की रुचि प्रदर्शित करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का दशम स्कंद में विशेष रूप से वर्णन किया और सब लीलों में स्कंदों में जीव तत्व, माया तत्व, कृष्ण तत्व, ये सब का वर्णन सब किया. अज्ञानता का संसार क्या चीज है इसका वर्णन किया और दशम स्कंद में कृष्ण की विशेष लीलाओं का वर्णन करके जीवों को उसमें रुचि लाने की चेष्टा की और अंत में दशम स्कंद के बीच में 29, 30, 31, 32 ये पंच प्राण है और उसमें भी पंच प्राण के बीच में जो बीच वाला जो प्राण है वो 31वां इसका उपदेश किया गया। किसी किसी जीव का अगले जीव का इसमें और इतने सुंदर रूप में वर्णन किया जो किसी भी शास्त्र में कहीं भी ये नहीं मिलेगा। कोई किसी जीव का ऐसा सौभाग्य नहीं जिससे समझेगा। और फिर ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें भी दो पहलू बनाया, एक मिलन में कृष्ण की सेवा का और एक विरह, जबकि कृष्ण से वो अलग हो जाते हैं ब्रजवासी लोग, विप्रलम्ब जिसको कहते हैं। हम लोग जगत में इसीलिए आए थे, किंतु ओटन लगे कपास, सारा जीवन इसमें चला जाता है, साधु संग हो नहीं पाता। तो इसके बाद में विरह, पहले दिखाया पूर्वराग गोपी गीत बेनु गीत में, और अंत में फिर दिखाया उद्धव संदेश भ्रमर गीत इत्यादि।
बंद कर दिला तो एक जन चले जा बंद कर
भ्रमर गीत और एकादश और द्वादश में, एकादश और द्वादश में बताया कैसे उस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं। साधन क्या है, इन सब में साधन नहीं बतलाया, इसमें एक लोभ दिखाया और एकादश द्वादश स्कंद में साधन दिखलाया। जैसे एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में उद्धव जी कृष्ण के निकट जाते हैं, कृष्ण किस स्थिति में है, कृष्ण जी एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए हैं और सब जदवंशी लोग लड़ लड़ करके परस्पर सरकंडे से ध्वस्त हो गए हैं। ऑल दी जदवंशी हैव बीन डिस्ट्रॉयड क्वारलिंग अमंग देमसेल्फ। बलदेव प्रभु हैज गन अवे इन ए शेप ऑफ सर्पेंट, वाइट सर्पेंट, एंड कृष्ण इज सिटिंग ऑन ए पीपल ट्री वेरी माने ग्रेव मूड, बड़े गंभीर रूप में बैठे हुए। और उसी समय में उद्धव जी आए, वहीं पर जहां पर सोमनाथ जी का मंदिर है भरावल के पास, वहीं पर बैठे हैं। उद्धव जी आए और इतने में मैत्रेय ऋषि जी आ गए। उस समय उद्धव जी को लक्ष्य करके ये सब बतला रहे हैं अपना सब तत्व, कृष्ण स्वयं उनको बतला रहे हैं। तो 19वें अध्याय में ये वर्णन किया, उद्धव जी कुछ भाप लिया, समझ लिया, जो कृष्ण ही न्यू दैट कृष्ण इज गोइंग टू एंड हिज पास्ट टाइम, सो ही आस्क्ड समथिंग एंड व्हाट कृष्ण रिप्लाइड, दिस इज कॉल्ड उद्धव संवाद। तो वहां पर कृष्ण ने उनको बतलाया, बहुत ही छोटा सा अध्याय है किंतु बहुत अच्छा है साधन के लिए। वैसे तो सब श्रीमद् भागवत में सब सार ही सार है, कोई असार नहीं है, नहीं बतलाया ना निगम कल्पतरो, सब सार असार है। तभी दूध में सभी सार होने पर भी साधु लोग मंथन करके उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, जब मक्खन निकाल लिया तो बाकी क्या रहा, तभी खाने से कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा, किंतु उसका घी जो सार है ये निकल आया। इन मिल्क देर इज नथिंग, असार नहीं है,
एवरीथिंग इज द एसेंस,
ऐसा Everything.
Nothing is wasteful.
Nothing is unusual. Yeah?
Unusable.
Everything is. But even we make it curd and we churn it. And ghee comes. Like way, in Srimad Bhagavatam, nothing is unuseful. Every thing. But yet, Sanatana Goswami, in his Vyad Bhagavatam, has told this. उन्होंने सनातन गोस्वामी ने कहा उसका भी सार मत करके अपनी मैया को उन्होंने वो सार क्या गोपी प्रेम इसी तरह से उन्होंने बतलाया भगवान की भक्ति के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा ये कैसे होगी भक्ति कैसे भक्ति होगी उन्होंने कहा भगवान की लीला कथाओं का अमृतमय लीला कथाओं का जो नित्य सेवन करेगा जो लोग अपने आप हरिनाम भी करते हैं और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के यहाँ वैष्णव के यहाँ भगवान की मधुर अमृतमयी अमृत लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते वो भक्ति अधूरी रह जाती है स्टैग्नेंट हो जाएगी इसलिए अपने से उन्नत स्वजातीय स्निग्ध आशय वैष्णव के साहित्य में हरि कथा कुछ सुनना पड़ेगा अमृत किस लिए कहा गया अमृतमयी कथा फिर वो मरता नहीं अमृत किसको कहते हैं आनंद को अमृत कहते हैं आनंद को बंद नहीं कर दिया वो बंद थोड़ा सा कर दो ना करो आनंद को अमृत कहा गया अमृत मीन्स अमृत का माने क्या न अमृत इते अमृत देवताओं का अमृत कुछ आयु बढ़ा देगा किंतु मरने से बचा नहीं सकेगा और वो रोज रोज प्रतिक्षण मरते हैं सब समय दुख की अनुभूति करते हैं दे आर रियलाइज ऑल सफरिंग्स काम क्रोध लोभ मद मोह बढ़ जाता है उनका इसलिए वो अमृत नहीं है मोक्ष को भी अमृत कहा गया किंतु मोक्ष में सुख की अनुभूति नहीं आनंद नहीं इसलिए अमृतमय मैंने क्या नित्य काल के लिए अत्यंत सुखमय आनंदमय स्थिति का लाभ करना ही हो सकता है तो ये क्या चीज है कृष्ण की सेवा कृष्ण की जितनी प्रकार की सेवाएं हैं सभी अमृतमय होने पर भी ब्रज की सख दास्य और बासल्य और मधु ये सबसे उन्नत अमृत और उनमें भी राय रामानंद के संवाद में आप लोगों ने सब देखा मधुर रस की जो भक्ति है वही यथार्थ में अमृतमय इसलिए उन्होंने कहा जो अमृतमय कथाओं का सेवन करे जो उसको जरूर भक्ति होगी और भगवान के मधुर नामों का गुरु से सुन करके अनुसुणियात अथ वर्णीय जह पहले सुने सुनकर के यहां धारणा करे और फिर वर्णन करे तो इसके द्वारा भक्ति जरूर होगी दो भगवान का प्रतिपूर्वक पूजन भगवान माने राधा कृष्ण जुगल इनकी प्रेममयी सेवा माने कोई शांत भाव से करते हैं कोई सख्य भाव से कोई दास्य भाव से अधिकांश लोग दास्य भाव से करते हैं और ब्रज में रहने वाले विशेष करके महिलाएं करती हैं बाल गोपाल की सेवा और उनमें भी उन्नत वाले जो हैं सदगुरु से इस चीज को पाने वाले मधुर रस से राधा कृष्ण की जुगल की उपासना करते हैं तो ऐसा उनका पूजन हो प्रीतिपूर्वक विशेष करके अर्चन मार्ग वाले बदी मार्ग की अपेक्षा भाव मार्ग का जो है वो श्रेष्ठ है पूजन किंतु उसके अधिकारी कम है प्रारंभ से ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जो ऐसे प्रेममयी सेवा भी विशेष करके गुरु की सेवा को बतलाया गया विसंभव सेवा होनी चाहिए। गुरु की कैसे सेवा करेंगे? विसंभव गुरु सेवा। किंतु इस जगत में साधन की स्थिति में विसंभव भाई हमारे विचार से वो पूरा ठीक नहीं है। वो किसके लिए है? अनर्थ मुक्त साधकों के लिए। और हम जैसे अनर्थ ग्रस्त लोगों के लिए विसंभेन गुरु सेवा यह अपराध का कारण बन जाता है। इसलिए अभी साधन की साधारण निम्न स्थिति में भाई विसंभेन गुरु सेवा होने से ही उसके अंदर में कुछ अनर्थ है और गुरु से भी उसका ठन जाएगा। वो विसंभव सेवा कर रहा है ना, तो गुरु को शासन करेगा, गुरुजी ऐसे चलिए ऐसे चलिए। और यदि गुरु उसकी बात नहीं मानेंगे तब विसंभव वाला क्या करेगा? कर जैसे गुरु को हम छोड़ देते हैं, आज से उनकी बनी नहीं, बस हो गया। इसलिए इस विषय में खूब सावधान रह करके अभी नहीं, अभी तो उनके आदेश निर्देश विधि पूर्वक ही करना पड़ेगा। जय जय ही हमारा अनर्थ दूर हो जाएगा तब अपने आप विसंभव में हम प्रतिष्ठित हो। विषम्भ माने विगत संभव, संभव माने ऐश्वर्य की बुद्धि, उनके प्रति आदर की बुद्धि है, ये हमसे पूज्य हैं और हमसे बहुत बड़े हैं, हमारी उनके बीच में दूर फैसला है, ये बहुत ज्ञानी है, मैं बहुत अबोध हूं, ये विराट ऐश्वर्य युक्त है, हम साधारण कोटि के बद्ध जीव हैं।